जी दोबारा कहिए क्या फरमाया।
ये जो कुल ओवरलाव है
जी जी
कुल जो है क्या ना ये अमर अमर बिल मारूफ में आएगा।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखे कुल कह दीजिए कौन किसको कहे। अल्लाह रब्बे करीम ने जिब्राइल से कहा कि जाके मेरे महबूब को कहो कुल। उन्होंने आके कहा कुल। अब हजूर सलाम ने आगे कहना था लोगों को कह दिया। अब लोग किसको कह रहे हैं। अब जब आप नमाज में कुल कह रहे हैं तो असल में किसको कह रहे हैं। चलें जब आप मेंबर पे खड़े होके कहते हैं कुल हो अल्लाह हुआ तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप बता दीजिए लोगों को आगे कह दीजिए। नहीं 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 ये असल में क्या है कि हम अपने नफ्स को कह रहे हैं कि वो कहे। हम जब कुल हो अल्लाह हो अहद कह रहे हैं कुल हो अल्लाह अल्लाह ही तो है। हो आहद इसमें देखें दो दफा आया कुल हो वल्ला हो आहद। ये हो की आवाज दो दफा है या नहीं। ये ऑटो सजेशन है एक तरह की कि आप अपने अनफस में ये बात रासख कर रहे हैं कि वो आगे आपको बताता रहे आपको गाइड करता रहे। क्या यहां अल्लाह के सिवा है ही कुछ नहीं। अल्लाह के सिवा कुछ ना होना होना अल्लाह का होना होइयत। अल्लाह हू क्यों कहलवाते हैं। अल्लाह ही अल्लाह। लेकिन उसके लिए जो विजन चाहिए जो विस्टा चाहिए जो जाविया निगाह चाहिए वो क्या है। जो माइक्रोस्कोपिक भी ना हो टेलीस्कोपिक भी ना हो वो पैनोरामिक को क्या कहा। या तो हम बहुत चीजों को छोटी चीजों को बड़ा करके देखते रहते हैं या दूर की चीजों को करीब देखने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन वो जो पैनोरामिक यानी कि पूरी बड़ी स्क्रीन पे देखना है और फिर इस तरह देखना कि कोई चीज मिस ना हो सारी चीजें सारे कॉम्पोनेंट्स अपने अपनी प्लेस पे दिखें तब जाके आपको ये विजन हासिल होगा कि आपको ये एहसास रहे कि अल्लाह खालिक और मालिक है मैं मखलूक हूं और मैं बंदा हूं। मुझे अल्लाह ने अपने किसी मकसद के लिए तख्लीक किया और मुझे वो मकसद पूरा करना है। अब इस सूरत में सूरह इखलास में इसका नाम देखें क्या रखा इखलास खालसतन अल्लाह की तारीफ। ये तारीफ जो पांच आयात में जो तारीफ की गई है अल्लाह रब्बे करीम की वो मखलूक की नहीं हो सकती। हाँ या नहीं। तो ये पांच अज्जा जो हैं जो आइडेंटिफिकेशन हैं अल्लाह रब्बे करीम की ये हम अपने नफ्स को कहते हैं कि मुझे कहते रहो वो आपको रिमाइंड कराता रहे। ये कुल वाली सारी आयतें सूरतें जो हैं वो असल में आप अपने नफ्स को कहते हैं ताकि वो आपको आपके शऊर को गाइड करता रहे इन डेफिनेशंस की रोशनी में। क्या जरूरत पड़ी थी अल्लाह रब्बे करीम को ये बताने की। जरूरत ये पड़ी थी कि आपका जहन ये बात समझे कि अल्लाह मखलूक की तारीफी हदों से बहुत बालातर है। अल्लाह अहद है वाहिद नहीं कहा। अहद मैंने सेंट्रैलिटी उसी को हासिल है यूनिक है एब्सोल्यूट है। मखलूक नहीं हो सकती ना यूनिक हो सकती है ना एब्सोल्यूट हो सकती। उस जैसे कई लगे फिरते एक से बढ़कर एक पड़े। अल्लाह समद अल्लाह समद है हमने तर्जमा कर दिया बेनियाज है ना ना ना। असल में वो ला एहतियाज है उसकी कोई हाजत नहीं है। क्योंकि हाजतों का क्रिएटर भी तो वही है। और करें, हाजतें किसने तखलीक की हैं? आपके मेरे तकाजे किसकी तखलीक हैं? ज़ाहिर है तखलीक करने वाला तो उन तकाजों से मावरा है, बरतर है, अबव है। ये है समदियत। कहा लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को से जना गया ना किसी को जनता है, यानी वो प्रोक्रिएटिव प्रोसेस से बालातर है। ना वो उसका रिजल्ट है और ना वो उसका इनिशिएटर है। प्रोक्रिएटिव प्रोसेस क्रिएटिव है, वो क्रिएटर है। क्योंकि नोए खुद को दोहराती हैं, इससे लम यलिद व लम युलद का मतलब है नो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है, रिपीट कर रही है। अल्लाह तो इन चक्रों से बहुत ऊपर है। वलम यकुल्लाहु कुफ्वन अहदम पढ़ते हैं, ठीक है, वलम यकुल, वहां लिखा हुआ है वलम यकुन लहू कुफ्वन अहद, लिखा या नहीं? लिखने में कुन लिखा हुआ है, व लम और ना ही, यकुन कर सकता है, कोफो कफायत अहद, एक भी ऐसा नहीं है जो उसकी कफायत कर सके। यानी खानदान में क्या होता है, एक दूसरे की कफायत करते हैं ना, दादा जो है बेटे की, अपने बेटे की कर रहा है, वो बाप की कर रहा है, आगे बाप औलाद की कफायत कर रहा है। कोफो कफायत करना, देखभाल करना, परवरिश करना, अल्लाह इन चीजों से मावरा है। तो ये जो सूरत है ये खालिसतन अल्लाह की डेफिनेशन है, लिहाजा इसका नाम इखलास रखा। जब बंदा खालिस होके कोई काम करता है तो हम कहते हैं बड़ा मुखलिस है, यानी वो लालच में नहीं कर रहा, वो अल्लाह वास्ते जब कोई काम किया जाता है तो हम कहते हैं ये बड़ा मुखलिस है। खलूस, खलूस का मतलब हो गया खालिस होना। जब आप खालिस होके काम करते हैं, आने वाली तलाक को एज इट इज कबूल कर लेते हैं, तो आप मुखलिस हो गए। हमारे यहाँ मुखलिस ये है कि मैं आपका भला करता रहूं चाहे मेरा नुकसान ही होता रहे, हमारे यहाँ ये तर्जमा गलत कर दिया। तो ये बात वासे हो गई
जी। अच्छा, ये इसमें जो कहा जाता है लिमा ताकुलूना माला तकालून, मत कहो जो नहीं करते हो,
जी जी,
ये फिर कुल जो हम कहते हैं आगे तो हमने कुछ भी नहीं, जैसे समदियत या अल्लाह ताला की रिकग्नाइजेशन वैसे तो नहीं होती, हम वो मुसलसल कुल कह रहे होते, ये हम उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे उस आयत को?
नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह कहता है लिमा तकुलूना, मत कहो, माला तफालून, जिसको तुम करते नहीं हो। अब आपने अपने आप को कहा कि कह दो, मुझे याद दिलाते रहो कि अल्लाह की ये पांच प्रॉपर्टीज हैं, ठीक हो क्या? अब आप जब भी बोलेंगे, आपकी जब कैरफ अल्लाह सोचेंगे, तो आप वही बोलेंगे जो अल्लाह चाहता है। क्या कहा? मा तशाउना इल्ला अन यशाउल्ला, तुमको नहीं चाहना चाहिए सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। जब हम अपनी मर्जियां करते हैं तो गड़बड़ तो यहां से होती है। अब अल्लाह ने कहा लिमा तकुलूना, तुमको नहीं कहना चाहिए, मा ला तफालून, जो नहीं करते तुम। यानी देख, आप बोलने से पहले ये जायजा लेना कि जो मैं करता हूं क्या मैं वही बोल रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि भी अल्लाह को महसूस करो, क्या मतलब हुआ इसका? मैं वही बात कह रहा हूं जिसका मुझे शऊर है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं महसूस करना सीख चुका, लिहाजा आपको क्या इल्तजा कर रहा हूँ कि आप भी सीख लें। महसूसात का खेल है, आप दुनिया में आए क्या लेकर आए, हवास। हवास क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जब अल्लाह को बतौर वजूद मुदर्रक हम महसूस करना सीख लेंगे तो क्या होगा, हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अल्लाह तो हमारे करीब है ही, अल्लाह तो हमारे अंदर है। मेरा दिल कौन धड़का रहा है, मेरा सांस कौन चला रहा है, मेरे जिस्म के हर उज्व की फंक्शनिंग मेरे इलम में नहीं है और हो रही है। गुर्दे काम कर रहे हैं, आंतें अपना काम कर रही हैं, जिगर अपना काम कर रहा है, तिली अपना काम कर रही है, मेरे सारे ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके नीचे थैलामस और ऊपर थायराइड तक, ये सारे ग्लैंड मेरे इलम में हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर कोई बता देता है तो हम कहते हैं बड़ा आलिम है। गौर करें, बात इतनी सी है कि हमें महसूस होता है कि ये सब निजाम एक हस्ती चला रही है और मैं उस हस्ती को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। शऊरी नहीं, किसी ने बताया नहीं, नहीं हमने खुद खोजा भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं कि भी आखिर दुनिया में मुझे भेजा क्यों भेजा। अब ये बात जब मैं अर्ज कर रहा हूं कि भाई देखें दुनिया में आए, हम कहते हैं ना दुनिया में आए, तो कहां से आए ये नहीं सोचना। अगर आए तो पता चलता है जी कहां से आए, वो जो जवाब दिए जाते हैं वो सारे गुमराह कौन है। अब जब कुरान ने बता दिया कि भाई कौन कहने के नतीजे में आप वजूद में आए, फिर आपको अलस्तो बे रब्बिकुम कह के आपके अंदर हवास एक्टिवेट किए गए, फिर आपके अंदर अल्लाह ने गौर व फिक्र की सलाहियतें फूंकी, नफख्तो फिये मिन रूही, फिर उन सलाहियतों के इस्तेमाल का इल्म सिखाया, अल्लम अल आदमा इस्मा कुल्लहा, उन गौर व फिक्र की सलाहियतों का इल्म आदम को सिखाया, ठीक है। ये सारे दर्जे गुजरे, पता नहीं कितने साल लगे, करोड़ों साल लगे कि लाखों साल लगे, उसके बाद आपको कहा जन्नत में रहो, कोई मालूम नहीं कि जन्नत में आप कितना अरसा रहे, फिर आपको कहा कि इस दरख्त के करीब मत जाना, आप चले गए, वहां से क्या हुआ, वापस नीचे उतरो। वहां से आप नीचे जब आ रहे थे तो आप आलम में तिमसाल में आए, बरजख में आए, यहाँ पे दुनिया में आए। अब दुनिया में यानी ये लाखों करोड़ों साल पहले कौन कहा गया, वो लाखों करोड़ों साल से हम एग्जिस्ट कर रहे थे अल्लाह के हाफजे में, हमारा वजूद गैब में कब से था। अब हम दुनिया में आए तो हीन और तीन में से गुजर रहे हैं, हीन मतान इलाहीन, एक मुद्दत के लिए 50 साल या 100 साल, मैक्सिमम एज क्या है आपकी, इन बिटवीन 50 और 100 के दरमियान में ही लोग एक्सपायर हो जाते हैं। कहा कि ये तीन है, तीन मैंने कीचड़ गिलाजत, आपने इस गिलाजत में से एहतियात से गुजरना है, अगर आप एहतियात से गुजर जाएंगे तो ये तकवा हुआ, अगर आप आलूदा हो गए आपने सफाई कर ली तो ये तज़किया हो गया, अगर आप इस जिंदगी का असर लिए बगैर, जिंदगी का इस दुनिया की जिंदगी का असर नहीं लेना, क्या असर नहीं लेना, वसरल हयात दुनिया, ये हमारे जराइम की फहरिस्त में शामिल हो जाता है अगर हम असर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, आपसे कहा गया कि भी देखो इतना फासला है, इसमें से एक फरलांग कीचड़ है, इससे एहतियात से गुजरना, आप जाके उसी कीचड़ में लेट गए। अब हमारा वो हाल है कि हम कीचड़ में पड़े हुए हैं, लुथड़े हुए हैं, अपने मुंह पे भी मल रहे हैं, दूसरों पे भी उछाल रहे हैं। अब बताइए जब माँ हमें पकड़ेगी कीचड़ से निकालेगी, अगर हम एहतियात से गुजर जाते तो शाबाशी मिलती। दुनिया में आने में क्या हुआ, वो आठ स्टेशन का हाल हम भूल गए, इसलिए इंसान कहला रहे हैं। इंसान का लुगवी मतलब क्या, भूला हुआ, क्या भूल गए, ये पिछले आठ स्टेशन की दास्तान भूल गए, अपनी तखलीक का मकसद भूले हुए हैं। क्या कहा सूरह यासीन में, वह निसी खल का वह हो वह हसीम मुबीन, गौर करें, कुरान ने कोई बात रहने दी, असल कहानी ही हमें कुरान ने समझाई। वो कहानी के बजाय हमने रिवायतें और हकायतों का अंबार लगा दिया। अब उस सुई को, खोई हुई सुई को ढूंढना अंबार में से, भूस के अंबार में से भूस भरा हुआ है। अब वापसी का जो सफर है वो भी तो यही आठ मराहल, जो हम ऊपर से नीचे आए हैं, असफल में आए हैं, असफल असाफिलीन में पड़ गए। अगर हम असफल से वापसी पे अपने एहसन तकवीम की तरफ का सफर करेंगे तो बताइए हम अल्लाह के लाडले नहीं हो गए? हम हैं ही अल्लाह के लाडले, महबूब तरीन मखलूक है अल्लाह की। अल्लाह की महबूब तरीन, इस कदर महबूब के शैतान ने आपकी शान में गुस्ताखी का एक जुमला बोला, खैर मिन हो, अल्लाह ने उसको मर्दूद करार दे दिया। ये कुरान बता रहा है, ये हिस्ट्री है इंसान की। क्या कितनों को शऊर है? देखिए ना, हमने चूंकि कुरानी शऊर को नहीं अपनाया, हम अपने शऊर के चक्कर में पड़े हुए हैं, इल्हाम के दर्जे पे पहुंचे नहीं। फलहामहा फजूरहा व तकवाहा, अल्लाह इल्हाम करता है, हमने कभी तो वजह ही नहीं दी। जब हमें वो इल्हाम की कैफियतें हासिल होंगी तब वही को समझने का जहन अता होगा। वही क्या? कुरान। कुरान वही है, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह की बात को उस तरह समझना जिस तरह अल्लाह चाहता है, ये मकसद है इंसान की जिंदगी का। वरना गौर करें, हर चीज का कोई मकसद है, इंसान का कोई मकसद ही नहीं है। भाई माचिस की तीली को देखें, उसका भी एक पर्पज है। दरख्त को देखें, उसका भी पर्पज है, वो ऑक्सीजन बना रहा है और स्टार्च बना रहा है, निशास्ता किसी भी फॉर्म में, सब्जी की या फल की या गंदम की या बीज की सूरत में या दालों की सूरत में। जानवर क्या कर रहे हैं? आप उनका गोश्त खा रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, उन पे सवारी कर रहे हैं, उनके गोबर से अपनी जमीनें जरखेज कर रहे हैं। इंसान किस काम का है? पता नहीं। इंसान का असल काम अल्लाह, मखलूक होने के नाते क्या फर्ज बनता है कि खालिक की बात को समझे और खालिक के मुताबिक चले। हम यहाँ दुआएं कर रहे हैं, दुआ का मतलब हमने अल्लाह को डिक्टेशन देना लिया हुआ है, डिक्टेट कर रहे हैं ये कर दे और ये मत कर, ये नहीं पूछते कि बारेला मेरे लिए क्या हुक्म है। देखे ना, जब मैं मखलूक हूं, अब वो कुरान की दुआएं जो हैं वो नहीं करते हम, जो कुरान में अदिया मजकूर हैं, जो अंबिया कराम जिस तरह से अल्लाह हमें क्यों बता रहा है, ताकि हमें तरीका तमीज सिखाए कि अल्लाह से कैसे बात करनी है। हम उन सारी बातों को छोड़ के कहां घुसे हुए? बात हो रही थी लिमा तकुलूना माला ताफालून, तो जब आप एक चीज को महसूस ही नहीं करते तो बोलते क्यों? जब आप करते नहीं हो एक काम को, तो इससे क्या होता है, इस छोटी सी आयत में कितने बड़े राज पोशीदे हैं। तो पहले अपना शऊर डेवलप करो, फिर बोलो, और वही बोलो जो इतना तुम मैं कर सकते हो, जो अमल के दर्जे पे ला सको। तीन चीजें हैं ना, इल्म है, फिकर है और अमल है। अगर कोई चीज इल्म के दर्जे पे है और आप उसमें फिकर किए बगैर बोल रहे हैं तो वो अमल तो नहीं बनेगी ना। तो मा ला ताफालून, अब वाजे हो गई बात, कोई तजाद नहीं है। माफी चाहता हूँ, बात लंबी हो गई, वो मैं जरा, वो आपने लफ्ज तजाद इस्तेमाल किया तो मैं तजाद को हल करने बैठ गया। बात वाजे हो गई? आपका शुक्रिया कि आपने इतना गहरा सवाल पूछा। देखे ना, जब आदमी गौर व फिक्र करता है और जब शऊर आड़े आता है तो शऊर में तजाद होते हैं। मैंने एक दफा हजूर मुर्शिद करीम से कहा, जरा जुरत रिंदाना देखिए। मैंने अर्ज की, बड़ा मौका ढूंढ के बाकायदा इसकी तैयारी करके होमवर्क करके जेब में पर्ची डाल के तो बात छेड़ी मैंने, कहा हुजूर मुझे आपकी बातों में आपके कॉलो फेल में तजाद दिखता है। मुझे यकीन था कि अब्बा मेरी पिटाई करेंगे यानी मैं इतना खाइफ था ऐसा सवाल पूछने से, लेकिन मुर्शिदे करीम ने हौसला अता किया, मैंने पूछ लिया। पता आपको क्या जवाब में फरमाया? उसी तरह झूमते हुए चल रहे थे हम, डीबत्ते से निकले थे, मुराक बॉल की तरफ जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा रास्ता जो पैदल रिक्शा लेने तक, ये उस दौरान मैंने सवाल किया, तो हजूर मुर्शिदे करीम उसी तरह झूमते कहने लगे हाँ शऊर में होते हैं। क्या ये तजादात जो हैं, ऑपोजिट्स जो हैं, ये शऊर की गेम है। बीज में से जब पौधा निकलता है वो मुतजाद सिमतों में चलता है, उसकी जड़ें नीचे जा रही हैं अंधेरे में, तना रोशनी की तरफ जा रहा है। तजाद नहीं है, एक एपीजियल है एक हाइपीजियल है, एक ग्रेविटी की तरफ जा रहा है और एक ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो तजादात का मजमुआ ही तो है हर चीज, लेकिन इन तजादात को सॉल्व करने के लिए आपको लाशऊर की सतह पे उठना पड़ता है। जब आप बड़ी पिक्चर पैनोरामिक देखते हैं तो आपको पता है कि भाई ये दोनों जरूरी हैं, जड़ों को पानी चाहिए और तने पे पत्तों को रोशनी और हवा चाहिए, लिहाजा दोनों अपोजिट्स। अब आप कहें नहीं ये तो गलत हो गया, तो भाई आपका विजन माइक्रोस्कोपिक हो गया, इससे क्या हुआ आप जजमेंटल हो गए मेंटल नहीं जजमेंटल भाई हम देखें ना ये तजाद का तज़करा कहाँ आएगा, जहां आप शऊर से काम लेते हुए अकल से काम लेते हुए तजाद को रिजॉल्व करने के बजाय उसको देखने रुक गए, उसकी रीजन देखें। अब देखें ना मेरे एक हाथ दायां है वो एक सिमत में जाता है, बायां हाथ बाईं तरफ जाता है, तो ये तजाद नहीं है? बिल्कुल है, मेरा सर ऊपर जा रहा है पैर नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई, तजाद नहीं है? हर चीज ये क्या है, बचपन में हम लड़कपन में ये, बल्कि बाज लोग मेरी गुफ्तगु सुन के कहते थे यू आर अ बंडल ऑफ कंट्राडिक्शंस, और मैं उलझता था कि यार मैं वाकई क्या कहता हूं, कभी एक वक्त में एक बात कह रहा हूं कभी दूसरे, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही होती थी। जैसे मैं जड़ की बात करूं वो नीचे जा रही है तो मैं कहूंगा नीचे जाना जरूरी है, फिर मैं जब तने को देखता हूं मैं कहता हूं ऊपर जाना जरूरी है, तो लोग कहते हैं तुम्हारी बातों में तजाद है। मैं रिजॉल्व नहीं कर पाता था, फिर रफ्ता रफ्ता क्या हुआ, मुर्शिदे करीम से कह दिया उन्होंने एक ही लफ्ज में, एक लफ्ज में, मैं हाँ शऊर में होता है, शऊर बना ही तजादात से। तो आज ये नुक्ता वाजे हो गया तजाद के लफ्ज से कि ये हमें कैसा सोच रखना है, जहन को कैसे बनाना है कि आप बैक वक्त ऑपोजिट्स को देखें और उसकी हिकमत को समझें। जी और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम।
पेशे अल्फाज से, आदमी का दिमाग दरअसल इसकी इसके इख्तियार में है, वो खलियों की टूट फूट को यकीन की ताकत से कम और ज्यादा कर सकता है।
जी
किस तरह कर सकता है कम और ज्यादा,
बता तो दिया यकीन की ताकत से देखे ना, पहले उसका हल बताया, यकीन की ताकत। अब यकीन क्या है ये समझने का, चूंकि ये समझ नहीं आया इसलिए सवाल पैदा हो गया। यकीन हमारे यहाँ जो लफ्ज का तर्जमा किया गया उसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। मैं आपको एक वाक्या सुना देता हूँ। मैंने मुर्शिद करीम से सवाल पूछा, हजूर ये यकीन क्या है? ये जो सवाल आपने किया, यही सवाल जब मैंने मुर्शिद करीम से किया तो वो हजूर मुर्शिद करीम मुराकबा हॉल में गेट के सामने इस तरह खड़े थे कि उनके उल्टे हाथ पे मस्जिद थी। उस वक्त ये दरमियान में स्कूल वगैरह और ये घर नहीं बने थे, तो ये मस्जिद बन रही थी। तो हजूर मुर्शिद करीम ने क्या किया कि ऐसे बायां हाथ उठा के मस्जिद की तरफ ऐसे पूरे हाथ से इशारा किया, कहने लगे ये है यकीन। मैं बिल्कुल गुंग हो गया, क्या बोलूं, मुझे तो नहीं समझ आया कि इसका क्या मतलब है, ये है यकीन। फिर अगला जुमला फरमाया, यहां से यकीन बटेगा, वो भी नहीं समझ आया मुझे। फिर तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, ऐसे हाथ को हिला के ये इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, और हाथ को ऐसे हिलाया कि ये कुछ नहीं है। अब उधर मैं लोहो कलम में पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी यकीन क्या है। जब मैंने ये सवाल पूछा था, मेरे जहन में बैकग्राउंड में ये बात थी कि मुर्शिद करीम से मैं ये बात पूछूंगा तो मुझे यकीन आता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, अब हजूर ने ये तीन जुमले बोले, आपको समझ आया क्या बताया उन्होंने? अब जब मैं इस पे गौर करता रहा एक हफ्ता दस दिन लगे मुझे, आखिर एक दिन लगे रहने से क्या हुआ, वो हजूर मुर्शिद करीम के इस इरशाद का असल मफहूम मेरे जहन में ये आया कि यकीन वो ताकत है जो ख्यालात को मजहर बनाती है। क्या देखे ना, जब उन्होंने कहा ये है यकीन, यानी मैंने सोचा यहाँ मस्जिद होनी चाहिए, अब अल्लाह ने इंस्पायर किया ना कि यहाँ मस्जिद बनाओ, हजूर मुर्शिद करीम खड़े हो गए मस्जिद बनाने। अब जब मस्जिद बना रहे थे तो क्या हुआ, कहा कि ये है यकीन, यानी मैंने आने वाली तलाक को उसी तरह वसूल किया और उस पर काम करना शुरू किया, तो वो जो तलाक थी वो मजहर बन रही है। तो यकीन क्या हुआ, वो ताकत जो चीजों को मजहर बनाती है। अब हम बात को तस्लीम करने का नाम यकीन रख के बैठे हुए, हम कहते हैं ना मेरा यकीन करो, यानी तो मेरी बात मान लो। नहीं भाई, मेरे अंदर वो ताकत, वो एनर्जी जो मेरे ख्यालात को मजहर बना दे, यानी उनको क्या कहा भी थोड़ी देर पहले, लिमा तकुलूना माला तफालून, यहाँ पे भी यही बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो तुम कहो वो हो जाए, वो करके दिखाओ। ये विल पावर हुई या नहीं हुई? तो विल पावर, अब ये अंग्रेजी में सलीस उर्दू में अर्ज कर रहा हूं कि जो ये जिसे हम विल पावर कहते हैं ना, कुव्वत इरादी, ये कुव्वत इरादी का दूसरा नाम है यकीन। अगर आपके अंदर कुव्वत इरादी काम नहीं कर रही तो आप खलियों की टूट फूट को कैसे रोकेंगे? बेयकीनी से वो टूटते रहेंगे। आप कभी कहते हैं ये करूं, कभी कहते हैं वो करूं, यकसू हुए नहीं, यकसुई। अब मसलन इसका सबसे आसान तरीका है, आप अपने सांस पे तवज्जो दें, सांस पूरा लेंगे जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार, ये मादी फायदा है क्या कि जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदारें पूरी होंगी, दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, टूट फूट कम हो जाएगी। रूहानी फायदा ये है कि जब आप सांस इनहेल कर अंदर खींचते हैं, ये सांस का सऊदी रुख है, ये बात हजूर मुर्शिदे करीम ने किताब कलंदर शऊर में दो सफे लिख दो चैप्टर्स लिखे हैं सांस पे, उसमें ये बात फरमाई है कि ये सांस अंदर लेना सांस का सऊदी रुख है, इससे बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता है। हम सांस इतनी हल इतना उथला लेते हैं कहीं ताल्लुक जुड़ी ना जाए। तो जब आप सांस गहराई में पूरा लेंगे, इनहेल करेंगे, फेफड़ों को पूरी तरह भरेंगे और फिर पूरी तरह उनको एक्सहेल करेंगे, यानी हवा पूरी तरह उन्हें खाली करेंगे, क्या होगा? आपकी कुव्वत इरादी बढ़ती चली जाएगी। जब कुव्वत इरादी बढ़ेगी तो क्या होगा? अब इसके फायदे देखें। उसी उन्हीं दो चैप्टर में एक जुमला ये लिखा है कि इंसान, हम सांस के जरिए हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तीसरा जुमला बहुत ही शानदार और बड़ा टेम्प्टिंग है, क्या? कि बंदा बुढ़ापे में झुर्रियों से महफूज हो जाता है। ये पेशे लफ्ज की ये यकीन की बात आपको समझ आ गई?
जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान
जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप में आप ठीक हैं? घर वाले सब ठीक हैं सर?
सब खैर वाफियत। जी जनाब।
सर ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाकया है, और यानी कि आपने जो है वो जिस्मानी इसके ऊपर इख्तलाफ है, जिस्मानी की है रूहानी की है, जो वाकया है वो दीवार में से गुजरने का और ये जो मिराज का वाकया, इसमें कुछ ममासलत कवानीन जो है?
जी हाँ बिल्कुल है, ममासलत भी है। कानून ये है कि हमारा मादी जिस्म, हमारा मादी जिस्म लाशऊर के ताबे है, हाँ या नहीं?
जी सर।
हजूर अलैहिस्सलाम अपने लाशऊर की इंतहा को छू गए। लाशऊर के सात दर्जे, सबे समावात, फिर अर्श, फिर बैतुल मामूर, फिर सिदरतुल मिंता, फिर हिजाबात, ये सारों से गुजरने के बाद मुकाम महमूद पे पहुंचे। ठीक है, ये कौन बता रहा है? कुरान बता रहा है ना? लिहाजा इसमें कोई डाउट करने की तो बात है ही नहीं। ठीक हो गया। अब चूंकि हम सोचते हैं शऊर से, और इल्हाम और वही की तर्जों को शऊर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने क्या अर्ज किया कि इस बात को समझने के लिए आपको शऊरी तर्जों को तर्क करना पड़ेगा। शऊरी तर्जों को तर्क करके तो फिर आप इल्हामी तर्जों को समझेंगे। जब आप वही की तर्जों को समझेंगे तो तब असल बात सब खुलेगी कि असल में मुकाम महमूद क्या है और ये मेराज असल में किसे का है। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद अली मुकाम सुन लें, अस्सलातो मेराजुल मोमिनी, कहा या नहीं? कहा या नहीं? ये हदीस है या नहीं?
जी सर।
क्या कहा? अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, यानी के बंदे का, मोमिन का ताल्लुक जुड़ जाना ही असल मेराज है। अब एक तरफ आप कहते हैं अल्लाह मेरे अंदर है, दूसरी तरफ आप कहते हैं अल्लाह मियां वो ऊपर सातवें आसमान के बाद अर्श और अर्श से ऊपर गुजर के मुकाम महमूद तक हैं। हजूर कलंदर बाब औलिया ने इस बात की कैसे वजाहत फरमाई? तर्ज इदराक। क्या फरमाया?
जी तर्ज इदराक,
कुर्ब और बोध। जब आप करीब महसूस करते हैं तो नहनो अकरबो अलैह मिन हबलिल वरीद, यह कहा जब आप इसे तर्ज़े इदराक दूर देखते हैं, दूर महसूस करते हैं तो आप उसे अर्श पे मुतमक्किन पाते हैं। तो अर्श असल में क्या हुआ, कहीं दूर हुआ या आपके अंदर ही वही नहनो अकरबो अलैह मिन हबलिल वरीद? क्यों जी?
जी जी बिल्कुल जी,
बात समझे आप, अल्लाह तो सबके अंदर है, अल्लाह तो सबके अंदर है, तो वो कहाँ मिले? बात समझ आ गई कि मेराज का क्या मतलब है? अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, इसमें सारी बात की वजाहत हो गई। जो बात मानते हैं, जो मोमिन हैं, जो अंदर से शांत हुए हुए हैं, मोमिन अमन से है ये मश्तक है, उनके लिए ताल्लुक का कायम हो जाना ही उनकी मेराज है। तीन लफ्ज हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। सलातो मेराजुल मोमिनीन, मेराजुल मोमिनीन, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा? आपको वाजे हो गया?
जी सर।
तो ये जिस्मानी या गैर जिस्मानी की वजाहत ही बीच में बेतुकी बात है, ये सब यहूदियों के फैलाए हुए विचार हैं, जिसका शिकार हैं बेचारे मुसलमान। काश ये मुस्लिम हो जाएं तो ये मुसलमानी के सबूत ना देते फिर। हमारे यहाँ मुसलमानी का सबूत आपको तो पता ही किसे कहते हैं।
पहले जो है कुरान की एक आयत है, सूरह अनफाल की है, आयत नंबर 70 है
जी।
उसके अंदर वर्ड है अफराद, है ना
जी जी।
और यही वर्ड जो है सूरह बनी इसराइल, जिसको सूरह अफरा भी कहा जाता है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के बारे में भी है, सुभान अल्लाह जी अफरा। दोनों वर्ड जो है ना वो एक ही है, लेकिन इनका रूट वर्ड चेंज किया गया।
क्या मैं, यानी मैं आपको दाद दूंगा कि आपने ये बात पकड़ी। यानी क्या किया गया, मैंने आपको याद एक दफा अर्ज किया था
ईमान के बारे में
कि डिक्शनरियों में अल्फाज का मफहूम बदल दिए, याद है? बस ये मुशाहिदा अल्लाह ने करा दिया, सबूत आप बता रहे हैं। भाई आप ये देखें ना, मैं अर्ज करता हूँ, अकीमो सलात का मतलब आपने कर दिया नमाज, अंग्रेजी में कर दिया प्रेयर। गौर करें तो इन अल्लाह व मलाइकत यसलूना अल नबी, यहाँ पे तर्जमा नमाज क्यों नहीं कर रहे हैं?
यहाँ पे क्यों नहीं?
गौर करें कि आप एक लफ्ज अकीमो सलात का तर्जमा कर रहे हैं नमाज पढ़ो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह और फरिश्ते नबी के लिए नमाज पढ़ रहे हैं? गौर करें, अब यहाँ पे क्या कर दिया, दरूद भेजते हैं, और आप क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह तू करी जा। अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अगर अल्लाह दरूद भेज रहा है तो आपको कह रहा है तुम भी भेजो, और आप अल्लाह को कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह तू करी जा,
तू करी जा, तू नहीं करना
हैं? साढ़े को तो नहीं हुंदा, हम बेचारे क्या कर सकते हैं, हैं? तू नहीं करना। सुभान अल्लाह, तर्जमों का खिलवाड़ देखा आपने?
बहुत सर, बहुत
یعنی صلات کا میں نے عرض کیا کہ دیکھیں تعلق, اب تعلق کے لیے دیکھیں کتنی چیزیں ضروری ہیں. اب ٹی وی کا ہے, ٹی وی کی مثال لیں, غور کریں ذرا, اس کو بجلی کا پلگ چاہیے کہ نہیں چاہیے, کنیکشن. تعلق کا مطلب کنیکشن. تو اس کو پاور دیں گے نا, وہ پلگ کو ساکٹ میں لگائیں گے تبھی تو ٹی وی آن ہوگا. اب دوسرا کنیکشن اس کو چاہیے اینٹینے کا یا کیبل کا, ہاں یا نہیں؟ اور تیسرا کنیکشن اس کے لیے چاہیے ویور کا, سامنے کوئی بیٹھ کے دیکھے تو صحیح, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی مشاہدہ کرنے والا چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی. تو تعلق کی یہ تین جہتیں ہوئیں, تینوں یہ تعلق ہے نا. ٹی وی کے ساتھ دیکھیں نا, لہروں کا نظام, بجلی کا نظام اور ویور کا نظام کنیکٹ ہوگا تو ٹی وی سے تعلق جڑے گا, ہاں یا نہیں؟ یہاں بڑے سیانے, یہاں آپ تعلق کا مطلب غلط نہیں لے رہے. جب میں کہتا ہوں کہ اس کا تعلق جوڑو تو آپ پلگ لگاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار تصویر نہیں آ رہی تو آپ اس کا اینٹینا چیک کرتے ہیں, اس کا چینل بدلتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ تو جب اللہ کی بات آتی ہے تو آپ کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ کرکٹ میچ دیکھنے. جتنے سیانے آپ دنیا کے کاموں میں اتنے ہی سیانے اللہ کے لیے بھی ہو جاؤ. بھئی دیکھو نا, دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنے سیانے, کم از کم اتنے سیانے اس حالا ہونا اس سے زیادہ چاہیے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے, اتقوا فراسۃ المؤمن, کہا یا نہیں؟ کیا کہا؟ بچ کے رہو, خیال کرو, دھیان سے رہنا مومن کی فراست سے. مومن کی فراست کہا یا نہیں کہ مومن, ہم نے ترجمہ کیا ہوا مومن کی فراست سے ڈرو. او بھائی ڈرو کیوں؟ اتقوا, دھیان رکھو, ذوق پیدا کرو, احتیاط سے بات کو سنو, سمجھو اس کی بات کو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. غور کریں, یعنی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, یعنی اللہ کے ذہن سے سوچتا ہے, کیرف اللہ سوچتا ہے, اللہ کے خیال کو اپناتا ہے. کیوں جی؟ تو یہ جواب آ گیا کہ ہمیں اتنا سیانہ ہونا ہے کہ ہم کیرف اللہ سوچنا سیکھ لیں. ہر چیز کو آپ کیرف اللہ سوچیں, اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. بڑا سمپل طریقہ, آپ کھانا کھاتے ہوئے ذرا سوچیں کہ یہ آپ کا ہاتھ جو روٹی توڑ کے اس کا نوالا بنا کے اسے سالن میں ڈبو کے آپ کے منہ تک لا رہا ہے, اور جوں ہی وہ منہ کے قریب پہنچتا ہے منہ کھلتا ہے, جوں ہی منہ نے یعنی آپ کے ہونٹوں نے نوالے کو پکڑا آپ کی انگلیاں چھوڑ دیتی ہیں. ذرا سی سنکرونائزیشن میں فرق پڑ جائے کیا ہوگا؟ یا تو اگر منہ لیٹ کھلے تو ہاتھ ہونٹوں سے ٹکرائے گا, یا ہونٹوں نے نہیں پکڑا اور انگلیوں نے پہلے چھوڑ دیا, کیا ہوگا؟ نوالا نیچے گر جائے گا. بچپن میں ہوتا تھا یا نہیں؟ بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ رفتہ رفتہ یہ سنکرونائزیشن بڑھتی ہے, کنٹرول آتا چلا جاتا ہے. جب بھی آپ کھانا کھائیں محسوس کریں کہ اللہ کھلا رہا ہے, میرا ہاتھ چلا رہا ہے, میرا منہ چلا رہا ہے, اور پھر اس کو ہضم کرنے کا پورا نظام جس کی مجھے خبر ہی نہیں ہے, وہاں کہاں جا رہا ہے یہ نوالا؟ حلق سے نیچے گیا, آپ کو احساس ہی نہیں رہتا کہ نوالا کہاں گیا. غور کریں بھائی, روحانیت کہیں آسمانوں میں نہیں ملے گی, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان پہ غور کریں. तो अल्लाह का निज़ाम समझ में आएगा। अल्लाह का निज़ाम समझ नहीं तो रूहानियत है। हम लोगों ने पता नहीं क्या रूहानियत का बैंड बजाया हुआ है कि रूहें दिखेंगी। वो रूहियत है, रूहानियत नहीं है, रूहियत है वो। ये जो इस किस्म की शोभदाबाजियों वाले चक्कर है, इसे रूहियत कहते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म में फर्क करें ना।
जी तो ये कलंदर बाबू औलिया ने अब्बा जान ने भी अपनी तहरीरों में लिखा हुआ है कि नस्मा मुफरद यानी कि ताने की जो इसकी हरकत है और एक बाने की है, तो हम
मैं आप से देखें। मैं आपको एक बड़ी लतीफ बात शेयर करूं। लफ्ज़ सल साल, इसमें दो दफा सल आ रहा है। इस बारीकी को एंजॉय करें। एको क्या होता है? आवाज गूंजती है तो दो दफा टकराती है, यानी के टकराव है ना, पलटना उसका फिर सुनाई देना। गौर करें स्वल साल जी, इस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं गया। इसमें दो दफा स्वल आ गया।
जी सर, जी जी
मारेजिम मिन नार। जी सवाल क्या था? माफी चाहता हूँ, मैं अपनी बताने बैठ गया, बहुत माफी चाहता हूँ। जी
नहीं सर, आप सही थे।
जी मिन मारेजिम मिन नार, मारेज किसे कहते हैं, ये सवाल बनता है।
नहीं मेरा ये था कि इस आयत को और जिस तरह से कहा जाता है कि जो ताने की जो मखलूक है या नस्मा मुफरत की मखलूक है वो जिन्नात की दुनिया है।
बिल्कुल सही।
नस्मा मुरक्कब की या जो ताने बाने की है वो इंसानी दुनिया है, तो इस आयत को हम इस एंगल से भी देख सकते हैं।
बेशक
इंसान जो है वो इस
अच्छा मैं जी जी बिल्कुल, मतलब वो नस्मा मुतलक फरिश्ते हैं, नस्मा मुफरत जिन्नात हैं, नस्मा मुरक्कब इंसान है। ठीक हो गया, ये तो अपनी जगह। मैं जिस इस आयत में लुत्फ लिया, मैंने मिम मारिज, मारिज से मर्ज अल बहरैन यल तक, या मर्ज का लफ्ज अरबी में देखें मारिज आया और उधर मर्ज आया। और करें चूंकि आपको ये जौक है तो मैंने इसलिए जरा तवज्जो दिलाई। मिम मारेज मिन नार, आग में से मिलने वाली कोई चीज हेओला। इसको ताजुद्दीन बाबौलिया ने क्या कहा? पाबा हेओला। ये जो नार में से, मतलब मैंने अक्सर ये बात कही है और आपके भी मुशाहदे में है, कभी आप आग को रोशनी में जलते देखे खुले में तो उसके ऊपर एक लहर सी दिखती है हीट की। सहराओं में जब गर्मी पड़ रही हो तो जमीन के ऊपर ये लहरें ऐसे उठती हुई दिखती है ना, हीट की। इसे कहते हैं हेओला। मिम मारेज मिन नार, हमने कहा जी आग से बने, वो मिन नार कह रहे हैं। ये मिन को खा जाते हैं ना, मन नफख तो फी है मिनर रूही, मिन फिर खा गए। अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, सब तर्जुमों में हर जगह यही लिखा है। मैंने खप डाल दी के भाई ये मिन मत खाओ, मिन मिन मत करो, ये रूह में से कुछ फूंका। वरना तो सवाल ये बन जाता है कि जी अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी तो इसका मतलब हुआ कि हम अल्लाह हुए? ये मिन खाओगे तो फिर तो बनेगा। इसीलिए तो फिरौन ने कहा कि मैं इन्हीं रब्बों को मुलाला, वो भी मिन खा गया ना, तो फिर मूसा की कौम को मनो सलवा पे लगा दी।
सर ये जो वर्ड है बेदार या बेदारी का, ये बड़ा जो है गौर करने वाला है, बे और दार।
दार मैंने घर लेंगे या तख्ता दार लेंगे जी, तो दार किसे कहते हैं, रखने वाले को?
जी सर, मकान को,
ठीक है भाई, कमानदार, सूबेदार। देखे ना इस लफ्ज की इम्प्लीकेशन देखें। अब बेदार ये कुछ नहीं रखता जो अपने शऊर से लाशऊर से डिटैच हो गया वो बेदार हो गया। आपने बेदारी को सर पे चढ़ाया हुआ है, असल में आप कह रहे हैं कि रखते ही कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो लाशऊर है।
बिल्कुल बिल्कुल,
आहा
ये बहुत बड़ा जो है मुझे क्लिक कर रहा था काफी दिनों से।
देखें अल्फाज का जो इस्तेमाल है ना वो बरतने वाले के जहन पे होता है, ठीक है। सुनने वाला उसको जितने मर्जी मीनिंग पहनाए,
हेलो सर, सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने आपसे पूछना था कि जब हम सांस अंदर पूरा खींच लेते हैं तो उसको बाहर भी उसी तरह निकालेंगे, बस स्लो स्लो करके निकालना
है? बस जैसे जी चाहे। देखें मैंने अर्ज किया कि पूरा सांस पूरा लेना, ठीक है, मतलब फेफड़े पूरे फूले और पूरा पिचकाना है उनको, पूरा इनहेल करना है और बाकी आपकी मर्जी जितना स्लो लेंगे, एक्सहेल आप जिस रफ्तार से जी चाहे कर दें। जो योगा की तर्जे हैं उसमें वो पाबंदियां लगाते हैं, इसकी रेशियोज रखी हैं उन्होंने कि सांस को अगर आप 5 सेकंड में इनहेल करते हैं तो 10 सेकंड रोकें और 5 सेकंड में निकालें, ये 1:2:1 की रेशो हो गई। अगर आपको शौक हो तो फिर आप बेशक इन रेशोज के पेश नजर वो वक्त मुकरर करके मशक की जाती है, लेकिन मैंने तो कहा सारा दिन लें, सारे दिन में 300 से 500 सांस पूरे ले लें। 28,800 सांसों के मुकाबले में 300 सांस क्या रेशो हुई, 1 या 2%? 28,800 का 1% 288 बनता है, तो ये 1.5% के करीब बना, यानी कि आप 100 में से 1 सांस तो पूरा ले लो भाई।
ये करते हैं सांस लेके ना तो 5 तक गिनती है ना अंदर ही।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एक्सहेल कर दें मतलब निकाल दें, आहिस्ता निकालें या करके एकदम निकाल दें। जैसे अब देखें ना मैं आपसे बात करने के दौरान सांस लेता हूँ पूरा, फिर जब बात कर रहा हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही तो निकल रहा है, निकालने में तो मुझे जोर ही नहीं लगाना पड़ता।
रोकने का मसला आ रहा था कि अंदर रोकें जितनी देर।
वो देखें जितना ज्यादा आप रोकेंगे उतनी आपकी विल पावर बढ़ेगी, ये विल पावर को बढ़ाने के लिए सांस को रोकना। बाज लोगों को ये इतनी मशक हो जाती है, सांस पे कंट्रोल आ जाए तो विल पावर बढ़ती है, वो यकीन की ताकत। क्या कि जब आप सांस को रोकते हैं, बाज लोगों को इतनी मशक हो जाती है 2-2, 3-3 मिनट रोक सकते हैं वो, बात है मशक की। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि नहीं, आप एक जनरल रूटीन में चलें, अगर मशक करने को जी चाहे आप करें, अल्लाह हिम्मत दे अल्लाह ताकत दे कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा यानी रिटेन करें, जितना आप इसे रिटेन करेंगे, अगर आप 1 मिनट तक रिटेन करना सीख गए, मुझे बताएं आपके फेफड़ों की ताकत का क्या आलम होगा। इससे आपके मसल्स की फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी, ऑक्सीजन की अब्सॉर्प्शन बहुत बढ़ जाएगी, साथ में विल पावर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी विल से सांस लेना सीख रहे हैं, तो ये है विल पावर का इस्तेमाल। अब हजूर मुर्शिद करीम ने एक मश्क बताई थी कि रूहानियत की पहली मश्क क्या है, कि वो एक स्याह नुक्ता बना के उसको पलक झपके बगैर 5 मिनट तक देखने, यानी पहले आपकी पलक झपकने पे कंट्रोल हासिल करना है, तो विल पावर चाहिए ना। जब आप ये मशकें करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे विल पावर बढ़ती है, इसलिए करवाई जाती हैं। लेकिन जी
भी
आती है। जब आपका ध्यान इधर लगा हुआ है कि मैंने पलक नहीं झपकने देनी, तो सारा जोर किधर लग रहा है। जब आपका पूरा ध्यान इस तरफ है, मैंने सांस को आहिस्ता आहिस्ता लेना है, खींच रहे हैं, तो दुनिया से ध्यान हट गया कि नहीं हट गया? सांस पे तवज्जो है, लिहाजा आप उसे इनहेल कर रहे हैं, तो ताल्लुक अल्लाह से तो जुड़ा हुआ है, दुनिया से नहीं है तो कहां से, किससे जुड़ा हुआ है? ठीक हो गया जी? आप कतन ऐसा कोई ना कर सकते हैं ना सोचें। देखें, हम लाशऊर का प्रोडक्ट है। हम लाशऊर जो है वो क्या है? हजूर मुर्शिद करीम का एक जुमला रिसेंटली मैंने शेयर किया है, सुने। वक्त शऊर और लाशऊर की दस्तावेजी फिल्म है। क्या कहा कि लाशऊर गैब में मौजूद मजहर लाशऊर है, गैब में मौजूद मजहर यानी एक चीज मौजूद है और अपना इजहार कर रही है, वो लाशऊर है। फिर लाशऊर का में मौजूद उस मजहर का वकूफ, यानी जब आप रुक गए, आपने उसको समझना सीख लिया, तो ये शऊर हो गया। आगे क्या लिखा है, यानी बातनी कैफियत का मुशाहिदा। तो शऊर को आप कंट्रोल करेंगे या लाशऊर को करेंगे? नहीं, हमने शऊर को तरबियत देनी है कि वो लाशऊर की तलात को पूरा वसूल करना सीखे।
ये हमारे में बीमारी है, हमारा शऊर कबूल नहीं करता इतनी जल्दी।
अल्लाह आपको खुश रखे, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई। अब हमने इस शऊर को तस्लीम करने वाला बनाना है, इसे मुस्लिम बनाना है कि ये तस्लीम करे। किसको? लाशऊर की इतलात को, किसी और की बात को नहीं। अल्लाह कहाँ है, लाशऊर में या शऊर में? वराए लाशऊर है अल्लाह तारा, वराउल वराए लाशऊर है। तो पहले तो हमें इस शऊर, मैंने क्या अर्थ किया, शऊर से बाज आए, इल्हाम को समझें। फिर इल्हामी के तहरीर क्या है, ये किताब लौह कलम इल्हामी तहरीर है। ये हमारा वो जहन बनाती है जिसके तहत हम कुरान को समझने के काबिल हो सकते हैं। आखिरी जुमला क्या है लौह कलम का, अगर आप वसी तर इतलात हासिल करना चाहें तो उसका तरीका बजुज रूहानी अलूम कुछ नहीं, और उसके लिए हमें कुरान से रजू करना पड़ेगा। ये आखिरी जुमला है या नहीं? यानी पूरी किताब पढ़ा के उन्होंने हमें किधर ठेल दिया, कुरान की तरफ। रूहानी अलूम चाहिए तो कुरान की यानी वही की तर्जों को समझेंगे तो रूहानी अलूम हासिल हो गए। कितना क्लियर हो गया कि शऊर को ट्रेन करना है कि वो लाशऊर की कैफी उसका वकूफ हासिल करे। जब वो करेंगे तो फिर आपको इल्हामी तर्जों की समझ आएगी। फिर इल्हाम से ऊपर का दर्जा वही का है, यानी अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम समझना। ठीक हो गया? चले, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।